आगे चलिए, अल हफीज का दूसरा बड़ा कारनामा, अपने घर की हिफाजत। अल हफीज वो हस्ती है जो अपने घर की हिफाजत करता है। आप देखिए कि वो मुकामात जो इबादत के लिए मखसूस किए गए हों, इनमें से वही मुकामात महफूज हैं जिनकी अल हफीज ने हिफाजत की, और वो बेहतरीन हिफाजत फरमाने वाले हैं। तो इमाम इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी निशानियों के बारे में एक निशानी काबतुल्ला भी है। पत्थरों से बना हुआ एक घर, जरा सा सोचिए, एक ऐसी वादी में वाकई जहाँ खेती भी नहीं है। गैर अज़ीज़ ज़रइन, सूरह इब्राहिम में आता है कि अल्लाह मैं अपने बीवी बच्चे को वहां छोड़ आया हूँ जहाँ जरा सी कोई फसल भी नहीं उगती। चलिए, ना ही इस जगह कोई दुश्मन से काबतुल्ला की हिफाजत करने वाला था, और ना ही आसपास बागात थे, और ना ही ऐसे उमूर जिनकी तरफ लोगों को रग़बत होती हो। और अगर जिसकी तरफ रग़बत की और अजमत की कोई जाहिरी सूरत भी ना थी, यानी कह लीजिए खुले मैदान में रखा हुआ एक घर, कि ना सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उसके इर्द गिर्द और ना उसके इर्द गिर्द कोई लंबी चौड़ी बातें, लेकिन अल हफीज जल्ला जलालहू ने अपनी कुदरत से ऐसी हैबत और अजमत लोगों के दिलों में अपने इस घर की डाली। एक तो रग़बत से मखलूक इसकी तरफ माइल होती है, दूसरे ये कि जो इस दरबार में आता है वो जलील होकर दिल में आजजी लेकर बिल्कुल अपनी पस्ती को सामने रखकर इंतहाई गहरी नज़र के साथ आता है। और यकीन कीजिए पूरी दुनिया से मखलूक इन्हीं जज्बात के साथ खिंची चली आती है। और ये आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, एक दो दिन की बात नहीं है, हजारों साल से ये होता जा रहा है। हम तो इस्लाम के बाद सोचते हैं ना, हालांकि ये तो हजरत आदम के तौर से चलता आ रहा है मामला। सोचिए जरा, कोई घर इतना ज्यादा आबाद नहीं है जितना अल्लाह का घर। हमारे घर सजते, हम कहते हैं घर अच्छा होगा तो लोग खुश होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, सजाते संवारते, साफ रखिए घर, साफ घर में जाके मजा बहुत आता है। लेकिन बहुत बड़ा घर, बहुत फैंसी, और जान पे बनी रहे कि कोई चीज गिर गई तो घर वाले की मेहनत ना जाया हो जाए और जान ही ना निकल जाए। ऐसी भी फैंसी चीजें होती हैं घरों में कि बच्चे वाले तो आए ना हमारे घर। लेकिन इस पत्थरों से बना हुआ एक घर, काली चादर है ऊपर और कमरा, क्या खिंचे हुए लोग आते हैं हर साल, और हजारों साल से हो रहा है। किसी और घर के साथ पूरी दुनिया में कहीं ऐसा मामला नहीं किया जाता जो इस कुदरत वाले की रहमत के साए की वजह से इस दरबार के साथ होता है। और हाँ, ये भी तो देखिए कि दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के अजीम शान महल्लात होते हैं ना, कुछ अरसा बाकी और कायम रहे, फिर मुनहदिम हो गए। बस कोई इनकी बुनियाद या बाकियात देखने नहीं जाता, और कोई इनके खराब होने या गिर जाने से नहीं डरता। क्या घर है उसका, कोई व्हाइट हाउस हो, कोई ग्रीन हाउस हो, कोई ग्रे हाउस हो, कोई येलो हाउस हो, इस घर जैसा कोई नहीं। अभी ये जो चंद डेट्स गुजरी हैं, तो पूरे 1 साल हो गया हमें उम्रा करके आए हुए, तो कुछ साथियों ने उस उम्रे की याद की तस्वीरें कुछ ग्रुप में पिछले दिनों डाली हुई थी ना। एक तो कैसे किया, देखिए हम निकले 2-3 दिन के बाद सब बंद हो गया, फिर उसके बाद से अभी तक शायद नॉर्मेलिटी नहीं आई। लेकिन अल्लाह अपने घर की हिफाजत करते है, और कहाँ करता है। अलम तारा कई फ़फ़ाल रब्बुक बि अस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहू फ़ी तदलील। हाँ, कैसे कराई अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत अब्रहा के लश्करों के सामने। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलनाहू कस्फ़िम मअकूल, खाया हुआ भूस बन गए वो इंसान, वो फौजियों, वो जो छोटी छोटी कंकरियां थी उसी के अंदर दब गए। मैं अक्सर सोचती हूँ, अब तो खैर वो कैफियत नहीं है ना अभी, लेकिन आप देखिए कि लाखों लोग होते हैं हज के दिन और रमजान, और खासतौर पर 27वीं रात और 29वीं रात। मैं सोचती हूँ अक्सर कि इतनी दुनिया के पास दावेदारी है कि एक बॉम्ब गिरा दें तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, कर दें कुछ जो करना चाहते हैं, अरफात के मैदान में करें। अल्लाह नहीं करने देगा, ये दुनिया की हिफाजत नहीं है, ये अल हाफिज और अल हफीज की हिफाजत है। और आपको अल्लाह अपने घर की तीसरी तरह हिफाजत कैसे करेगा, लिखिए, दज्जाल सारी दुनिया में घुसेगा या नहीं घुसेगा। अभी हम अल्लाह के घर ही की बात कर रहे हैं, सोचिए जरा, दज्जाल पूरी दुनिया में एक फितना बनकर आएगा, लेकिन अल्लाह अपने घर को बचा लेगा। और यहाँ बहुत सारी हिफाजतें हैं, आप खाना काबा के फजाइल पढ़िए, बुक्स हैं बहुत प्यारी, एटलस मक्का, एटलस मदीना विद पिक्चर्स, हिस्ट्री भी है और आगे की भी चीज़ें। आप अहादीस में से कुर्बे क्यामत की चीज़ें पढ़ लें, तो अल्लाह हफीज अपने घर की हिफाजत कराता है। जब क्यामत आनी है ना, उससे पहले अल्लाह ताला खुद ही इस घर को, फिर हालात ऐसे होंगे कि ये घर भी ख़त्म हो जाएगा, इसके नीचे ही खजाना है वो भी लूट लिया जाएगा। बहुत कुछ है अभी, बस इमेजिन करें, आप कभी अल्लाह आपको हजर उम्रे पे ले जाए तो याद कीजिएगा कि अल हाफिज और अल हफीज, जैसे तूने इस घर की हिफाजत की ना, तो हमारे भी घरों की हिफाजत कर, हमारे स्कूलों की हिफाजत कर, हमारे इंस्टीट्यूट्स की, हमारी मस्जिदों की, हमारे मुसलमानों की जगहों की हिफाजत फरमा। बातें करना आ जाता है बंदे को अल असमाउल हुस्ना पढ़ के, हमारी गाड़ियों के, हमारे सेलफोनों के अल हाफिज तू ही हिफाजत करना, ये गिरते रहते टूटते रहते पता नहीं क्या होता, अल्लाह तू ही कर ले, करते का ठीक, बिल्कुल किसी को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। आगे चलिए, अल हफीज का तीसरा बड़ा कारनामा, किसकी हिफाजत, बहुत बड़ी चीज है, अपने बंदों के आमाल की हिफाजत। जी, अल हफीज वो है जो अपने बंदों के आमाल की हिफाजत फरमाते हैं। कैसे फरमाते हैं? एक एक चीज को गिनवा कर लिखाते हैं, इन्वेंट्रीज बनती हैं। अल हफीज पर हमारा कोई अमल छुपा हुआ नहीं है, ख्वा छोटा हो ख्वा बड़ा हो, हमारे किसी अमल को जाया नहीं होने देते। वह इन तक मिसकाल हब्बतिन, कभी अल्लाह कहते खरदल, फमैया मल मिसकाल जरतिन खैरन यरा और जरतिन शर्रन यरा। क्यामत के दिन ये नहीं होगा कि आपके अमल जाया हो गए और डिलीट ही हो गए, हमारी फाइलें डिलीट होती हैं, हमारी जान पे क्यों बनी होती है? अब तो मेरा दिल इतना गनी हो गया, फोन को कुछ हो जाए मैं कहती हूँ होता है तो फिर हो, मैं क्या करूँ, इतना भी बहुत है, हर डाटा नहीं, नहीं है तो ना सही। अल्लाह जब तक रखना चाहता है चीज़ों को रखता है, नहीं तो ना सही। हम उसी को कह देते अल्लाह बचा ले, वो बचा भी देता फिर माशाल्लाह। घबराया ना करें, फिक्र ना किया करें, कुल्लू मन अलैहा फान, सब कुछ थोड़ा, एक बच्चा हो किसी का अल्लाह की बना, फिर देखिए उसकी हिफाजत माँ की जान पे बनी होती है, घर से नहीं जाने देती, साइकी को जाती है माँ, इकलौता बेटा है, एक बेटा है, बड़ा बेटा है छोटा बेटा है, वो एक बेटा दिल में रहता है, आंखों में रहता है, खौफ में रहता है, धड़कनों में रहता है, वसवसों में रहता है, कर दीजिए अल्लाह के सुपुर्द, ये दिल अल्लाह के लिए बेटों के लिए नहीं है, इनको अल्लाह के रस्तों में खपा दीजिए, जाएं तो अल्लाह के रस्तों में जाएं, रहना तो किसी ने वैसे भी नहीं है। तो अल हफीज आमाल को ज़ाया नहीं होने देता, आपकी फाइल्स को डिलीट होने से बचा लेता है, आपकी नेकियों को ऐसे प्रिजर्व करता है, उस पर मनो बर्फ पड़ जाए ना तो वो क्यामत के दिन अल्लाह खोल कर दिखाएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ध ज़िलज़ालहा वख़रजतिल अर्ध अस्क़ालहा वक़ाल अल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा। जी, अल हफीज ज़मीन से खबरें लेगा, फिर उस पर कोई अमल ना छुपा हुआ है, ना छोटा ना बड़ा, क़यामत के दिन पूरा पूरा बदला मिलेगा, अच्छे अमाल तो अच्छा बदला, बुरे अमाल तो बुरा बदला। क्यों इंसान कहेगा वमा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतम वला कबीरतम इल्ला अख्साहा, ना छोटी बात छोड़ी ना बड़ी छोड़ी, तो अच्छे अमाल पे अच्छा बदला। हमारे यहाँ तो मिसकंसेप्शन पर हमारे रिजल्ट पाइल अप होने में सालों लग जाते हैं, हमारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने में कई कई महीने लग जाते हैं, अपनी चीज़ें अलमारी में रखी हैं उसको सीधा करने में गड़बड़ हो जाती है। अल हफीज़ किसी अमल को नहीं भूलते, आप जस्ट सर्च में डालेंगे वहाँ खुल के सामने आएगा, देखिए सर्च क्या है, अल हफीज़ की दी हुई हिफाजत है। आप अपने पूरे कंप्यूटर से चीज़ ढूंढने लगे, कौन सी खिड़कियाँ खोलेंगे, कितने दरवाजे विंडो खोलेंगे, सर्च करें आपको सामने आ जाएगी। आप कैसे, 1,000 किताब है तो आप कैसे एक एक को जाकर लिस्ट में ढूंढें, सर्च में, ये सर्च लिखिए अल हफीज़ का मामला। और सबसे बड़ी बात, उन अमाल में से किसी अमल को अल हफीज़ नहीं भूलते जिनको चाहे लोग भूल जाएं। आप लोगों के साथ 10 दफा अच्छा करें, एक दफा बुरा करें, लोग भूल जाते हैं आपको, बिल्कुल भूल जाते हैं, बल्कि कहते हैं आपने कभी नेकी की नहीं है, अल्लाह नहीं भूलता। आप लोगों की 10 चीज़ों पे सब्र करें, लोग कहते हैं हमने तो कभी आपको दुख नहीं दिया, हम कोई नहीं तकलीफ देते, ऐसे ही आप, अल्लाह कहते हैं मैंने लिखा हुआ, डोंट वरी, जाने दो, इन्नमा युवफ्फुस्साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब, मैं दूंगा तुम्हारे अजर, लोगों ने क्या देना, छोड़ो इनको पीछे कर दो। और अल्लाह सुब्हान अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने इनके अमाल गिन गिन कर रखे हुए, ये भूल जाते हैं अल्लाह नहीं भूलते। जी, 3 आयतें लिखिए जरा, आपको तर्जमे के साथ बताती हूँ। एक जगह तर हर चीज़ हमने गिन गिन कर रखी है, और इसी तरह सूरत इन्फितार में आते इन्ना अलैकुम लहाफिजीन किरामन कातिबीन, सूरत मुजादला की आयत 6 है, सूरत नबा 29 है, इन्फितार 10-11 और सूरत हूद 57, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शयइन हफीज। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए फरिश्ते रखे, आपको पता है किरामन कातिबीन फरिश्तों का नाम भी इसलिए है कि वो आपकी हर चीज़ को बड़ी इज्जत से लिख लेते हैं, ये भी हिफाजत का जिम्मा, लिखी हुई चीज़ वैसे भी अच्छी होती है ना। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत हूद से क्या कहा कि हमारा ख्याल क्या है कि हमारे देवताओं में से किसी ने आसेब पहुंचाकर नऊज़ुबिल्लाह आपको मजनून और पागल कर दिया, इसीलिए तो आप फिर ऐसी बातें करते हैं और दीवानगी की बातें करते हैं। तो हजरत हूद ने उनको समझाया था कि ऐसी बात नहीं है, तुम अपने देवताओं को अपने पास रखो, मेरा मामला तो क्या है। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शयइन हफीज, वो है हर चीज़ की हिफाजत करने वाला। ये मूर्तियाँ क्या करेंगी, ये मुझे क्या देंगी, इनके साथ मेरा मामला कैसे बिगड़ेगा, मुझे तो अल्लाह की फिक्र है कि मेरे मामला अल्लाह ताला के साथ अच्छा हो। और आप देख लीजिए, जितना आपको अल्लाह हफीज पे यकीन आएगा ना, आप सब जंतर मंतर छू मंतर खिसार करना और मौक्कल रखना और ये फूके मार सबसे बेनियाज हो जाएंगे। फरमाया जिसने अपने गले में तमीमा डाला, मैं उसको तमीमे के सपुर्द कर दूंगा तावीज़। और न्यूबॉर्न बेबी के गले में एक तावीज़, मैंने एक तस्वीर आज ही देखी है, पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चे के गले में एक तावीज़ डालकर किस हिफाजत की उम्मीद रखती है, एक काले कपड़े और एक टुकड़े से। तो ये है इंसान की तबीयत पे बोझ डालना, ये है डिप्रेशन। अल्लाह कहते हैं सारे देवता सामने आ जाए, मैं अकेला भी काफी हूँ, मैं गवाह हूँ इस बात का कि ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भरोसा सिर्फ अल्लाह पे, अल्लाह वख्तहु ला शरीक पे, जो रब मेरा भी और तुम्हारा भी, उसके कब्जे में हर एक। आप देखिए, सर का बाल कोई नहीं आपका गिरा सकता, बाल का बीका नहीं कर सकता, रब जिधर चाहे खींचे पकड़े फेर दे, किसी की मजाल ही नहीं है, उसके कब्जे इख्तियार से निकल कर भाग कर जाए कौन किधर। और न जालिम इसकी गिरफ्त से छूट सकते हैं, जिसकी पनाह में रहकर उसका कोई नहीं होता। तो लिहाजा अल हफीज पे नजरें रखिए, और किस चीज की हिफाजत करता है अल्लाह ताला, ईच एंड एवरीथिंग। दुनिया में मौजूद बच्चा, माँ के पेट में फीटस की हिफाजत कौन करता है, जितना माँ चलती फिरती, कभी गिर भी जाते, कभी बर्फ पे पाँव फिसला, कभी सीढ़ियों पे गए, कुछ भी हुआ अल्लाह बचा लेता है ना, और किसकी हिफाजत करता है अल हफीज। आपने सोचना है मजीद, एक एक चीज अल्लाह आपकी हिफाजत में रखता है। आप देखिए कई दफ़ा ऐसे होता है गाड़ी गिरते गिरते बचती है, अचानक ब्रेक लग गई, बच्चा आगे आता था बच गया, कदम कदम पे रास्ते में बीसियों गाड़ियां होती हैं इर्द गिर्द, अल्लाह हाफिज़ आपको खैरियत से घर ले आता है। और इस तरह की हर चीज़, अक्ल की हिफाजत, नज़र की हिफाजत, सोच की हिफाजत, ये बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। वो ज़ात जो अल्लाह हाफिज़ है ना, वो बड़े अजीब तरीकों से हिफाजत करती है। हर शख्स को कायल होना पड़ता है कि दुनियावी और रूहानी एतबार से भी कोई हमारा मुहाफिज है। हम समझते हैं पुलिस, चौकीदार, अजीज व अकारिब, पड़ोसी, ये सब हमारी जान की हिफाजत करने वाले हैं, मगर असल में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हिफाजत सिर्फ उसी की तरफ से है, और जब वो अपनी हिफाजत किसी से उठा लेता है ना, तो कैसे फिर चोर माल उठाकर ले जाते हैं, कैमरों के बीच में से ले जाते हैं, कुछ भी नहीं को पकड़ सकता, कातिल कत्ल कर जाते हैं, ख्वाह कितने पहरेदार मौजूद हो, निगेबान हो। इस वीडियो को देखिए ज़रा, ये ज़रा मासूम बच्चों के मुंह तो देखिए, और ये बच्चे माँ और बाप इन मासूम बच्चों को एक तो खाना खिला रहे हैं, अलमुकीत के कहने पे, ये देखिए ये माँ ही होगी बेचारी जो अपनी चोंच में भर भर के खिला रही है, बाप बाहर देख रहा है कि कहाँ से और दाना लेकर आऊँ। और ये हिफाजत का ज़रा अंदाज तो देखिए आप अपने छोटे छोटे बच्चों को सोचिए, कहाँ से आते हैं और क्या बन जाते हैं, कैसे अल्लाह ताला इनकी हिफाजतें फरमाता है, अल्लाह ताला के आगे ये कितना आसान है। अगर अल्लाह इनके दिलों में ना डालता तो कौन ललवाता, और ये जो बाहर घर बना हुआ है, ये इनको किसी ने बना के नहीं दिया, कैसे अपनी चोंचों में तिनके भर भर के खिलाते, देखे कैसे प्यार से, देखे उसको भी नवाला दे रही है, उसको भी नवाला दे, और उसके ऊपर बैठी हुई हैचिंग बोलते हैं ना, कैसे अंडे में से बच्चा निकलता है, अल्लाह हफीज अंडे की हिफाजत करता है। अल्लाह सुबहाना ताला किस तरीके से हिफाजत फरमाते हैं, एक अंडा जिसके अंदर से ये सारी चीज़ें निकलते हैं, और ये वो चीज़ें होती हैं कि जिसको आप सिर्फ सोच नहीं सकते। और आप देखें कि मासूम सा परिंदा, और ये बेचारे परिंदे जो बच्चे हैं इनकी क्या हिफाजत है, ये देखिए हर किस्म के माँ बाप अपने बच्चों की हिफाजत करें, ये डिफरेंट परिंदों को किसने सिखाया कि इन मासूमों की जान की हिफाजत करो। माँ हिलती नहीं है मां से जब तक बच्चे उड़ने के काबिल नहीं हो जाते। आप क्या सोचते हैं सिर्फ इंसानों की माँ हिफाजत करती है, आप अपने बच्चों की सीट बेल्टें बांधती हैं और उनकी इतनी भारी भारी ट्रॉलियों को उठा उठा के फिरती हैं, कई दफ़ा बच्चे की ट्रॉली ऐसे लुढ़कती हुई पहाड़ के करीब नीचे खाई में जाते जाते बच गई, तो ये अल्लाह की शान है, ये उसकी हिफाजत है। आप छोटे बच्चों को देखिए कई दफ़ा गिरते हुए बच्चे, और जब बचते हैं ना तो आंख के बिल्कुल करीब चोट लगती है, आप कहते हैं कि 10 फरिश्ते हैं एक इंसान पे, और उसमें से 2 आंखों के गिर्द भी बैठे हैं, कान में भी, हम सो जाते हैं, कितने जरासीम कीड़े मकोड़े रातों को बाहर निकल आते हैं, हमारी आंखों में क्यों नहीं जाते, हमारे कानों में क्यों नहीं जाते, क्योंकि अल हफीज ने हिफाजत फरमाई हुई है। जब वो बंदे की हिफाजत फरमाना चाहे तो फिर कौन उसकी ना दे, ये उसकी शान है। इसके ऊपर गौर करें। और मैं सोच रही थी कि वाकई अल मुकीत ये दिलों में डालता है, अल वदूद, अल मुकीत, अल हफीज, अल हाफिज है। और ये बच्चे अपने आप को कितना सिक्योर फील करते हैं, तो ज़रा सा इसको अपने ऊपर लीजिए। जब ये मासूम से परिंदे अपने बच्चों की हिफाजत करें और बच्चों के लिए ये माँ बाप मोहसिन है, तो जब आप इन परिंदों को पैदा करने वाले रब की पनाह में अपने आप को दे देंगे और अपने बच्चों को दे देंगे, तो आप क्या होंगे, आपकी क्या औकात है फिर इससे बढ़कर। इसके ऊपर गौर किया करें। आज आपने इस नाम को लेने के बाद अब अपने अंदर रखना है, कहाँ कहाँ अल्लाह आपकी हिफाजत करता है, आपके बच्चों की, आपकी चीज़ों की। और कोई चीज़ गिरते गिरते बच जाए तो फौरन कहा करें। अब देखिए ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, और अगर ना खिलाए तो मर जाए। आप देखिए कि इंसान के बच्चे की भी बात कर लें, रात को बच्चे की बाजू माँ के ही नीचे आके दब जाए, पेट में दर्द है बच्चा बता नहीं सकता, गीला बिस्तर है बच्चा बता नहीं सकता, अल हफीज ने उसके लिए इंतजाम किए, रुलाना, उधर बच्चे को भूख लगती है, उधर माँ के जिस्म में एक इर्तियाश आती है, लहर उठती है कि तेरा बच्चा भूखा है, उसको दूध पिला। कैसे माँ की मोहब्बत जोश मारती है और दूध बाहर आ जाता है, ये लकी शान है ना। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए सोचिए कि अल हफीज कैसे, ये सबाब है, उसने हमारे माँ बाप बनाए ना, क्यों कहिए कि रब रहम हुमा कमा रब यानी सगीरा, पैदा होते हुए छोड़ देता तो क्या होता। अब देखिए कि अल हफीज अपनी हिफाजत के तरीके क्या करता है, कि अंडों के अंदर माओं के रहमों में वो अल हफीज जल्ला जलालहू नुतफों और बच्चों की एहतमाम के साथ हिफाजत फरमाता है। कैसे ये सब कुछ होता है, फिर अंडे और रहम के अंदर बच्चा बहुत आसानी से ग़िज़ा भी ले लेता है, हरकत भी करता है, फिर वहाँ खून, पानी, रतूबत और हवा से मुस्तफीद भी होता है, फिर बड़ी हिफाजत के साथ अपने मुकर्रर वक्त पर बाहर आ जाता है। अल हफीज अगर हिफाजत ना करे तो आप बताइए कि ये बच्चा 9 माह 10 दिन वहाँ जी सकता है, माँ को तो खुद ना पता चले ये सब कैसे हो गया और क्या होता है। ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह का काम है, वो कैसे ये सारे मामलात कर देता है और हमें कानो कान खबर नहीं होती। हम जितनी भी फिक्र कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, असल बात यह कि वो अल्लाह की बात है। और इसी तरह से आप देखिए कि अल हफीज जब हिफाजत करने पे आता है ना, तो कैसे शाह फैसल रहमहुल्ला, इन्हीं के नाम पे फैसलाबाद का नाम बदला गया था लायलपुर से, एक मजबूत क़िले में एक महफूज मुकाम पर मुहाफ़ज़ों की निगरानी में बैठे हुए थे। लेकिन ये सारी हिफाजतें बेफ़ायदा साबित हुई क्योंकि वक्त आ गया और अल हफीज़ ने अपनी हिफाजत को इनसे उठा लिया। सारे पहरों और मुहाफ़ज़ों में बेखौफो खतर बैठे थे, सबके सामने दिन दहाड़े कातिल ने उनका काम तमाम कर दिया। हालांकि इससे पहले हज़ारों ख़तरनाक मुकामात पर गए और सही सालम रहे, मगर अब उम्र चूँकि ख़त्म हुई, अल्लाह की तरफ से परवाना जारी हुआ और मुहाफिज फरिश्तों की हिफाजत उनसे उठा ली गई। कितने बड़े बड़े बादशाह मजबूत कलों में बैठे बैठे अपने मुहाफिजों के हाथों मारे जाते हैं, वो मुहाफिज जिन्होंने जान जोखों में डालकर बड़ी मोहब्बत से बरसों इनकी हिफाजत की थी, अब क्यों हुआ कि वो कातिल बन गए। मेहरबान खादमीन कैसे कातिल बन जाते हैं, कैसे एक बाप साया पिदरी जो अपने खून और पानी से एक नन्हे पौधे की आबजारी करके उसको तनावर दरख्त बना देता है, उसे जड़ से कैसे उखाड़ फेंक देता है, फिर उस वक्त वो मोहब्बत और वो हिफाजत और उल्फत कहाँ चली जाती है। पता क्या चला कि पीछे कोई ताकत है, जब वो हट जाती है तो सब धरा धराया रह जाता है। अल्लाह की शान, अल्लाह का काम यही है कि वो इंसान को इन चीज़ों पे गौर व फिक्र की दावत देता है। कैसे एक ज़रा सा हकीर सा बीज सख्त ज़मीन के सीने को चीर कर बाहर आता है, और कैसे ज़मीन के अंदर इस अल हफीज़ जल्ला जलालहू ने इसकी हिफाजत की, इसे खराबी से बचाया और इस कमज़ोर सी जान को इतनी ताकत दी कि सख्त ज़मीन का सीना चीर कर बाहर आ गई, और कैसे फिर सूरज की रोशनी और चांद ने इनकी हिफाजत की और एक तनावर दरख्त बन जाता है और फिर खूब फलता और फूलता है। यह अल हफीज़ की हिफाजत है पौधों में। और इसी तरह से आप देखिए कि ज़मीन, पत्थर, मुख्तलिफ जगह, यानी इवन सीपों के अंदर गूंगों और समंदरों की तहों में ला तादाद मखलूक़ात की वो हिफाजत फरमाता है। वो जब किसी मखलूक से अपनी हिफाजत उठा लेता है वो फना हो जाती है, खशखाश के दानों के बराबर। खशखाश आप सभी ने देखी होगी, नहीं खाई तो खाइए, बड़ी मज़े की होती है। इससे भी छोटे छोटे अंडों को किस तरह हिफाजत से वो महफूज करके मखलूकात में बदलता है। रात दिन उसकी हिफाजत के मामले चल रहे हैं और उसकी हिफाजत के तो तरीके भी अजीब ही हैं। फिरौन जैसे बनी इसराइल के दुश्मन के जरिए मूसा अलैहिस्सलाम को परवान चढ़ा दिया। जी, अल्लाह अल हफीज वो है जो फिरौन के घर में मूसा को पलवाता है। लिखिए ये जुमला। जानवरों को अल्लाह हिफाजत का जिम्मेदार बना देता है। एक भेड़िया एक बच्चे को उठाकर ले गया और फिर बाद में अल्लाह ने जब उसके दिल में डाला वो उसी को बचाने वाला बन गया। कई दफा आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी, शेर है वो बिल्ली के बच्चों की हिफाजत कर रहा है, बिल्ली के ऊपर चूहों के बच्चे फिर रहे हैं। तो सच ये कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और याद रखिए कि उसकी हिफाजत जमीनों आसमान के जर्रे जर्रे और पत्ते पत्ते पर है। हम इसका हिसार कर ही नहीं सकते। अखरोट का छिलका इतना सख्त क्यों होता है? बादाम इतना सख्त क्यों होता है? तरबूज का बाहर का छिलका इतना सख्त क्यों होता है? क्योंकि अंदर वो नरम गूदा है, उसकी हिफाजत करनी है। अब देखिए, पौधे की तरावत को रतूबत के साथ महफूज करता है। कभी एलोवेरा जेल देखी हो आपने? कैसे अंदर है जो मेवा सिर्फ छिलके से महफूज ना रहे, उसकी हिफाजत कांटों के साथ करता है। कांटे नबातात के हथियार और हैवानात के हथियार, सींग पंजे और कुछलियां हैं। यानी ये उसके मुख्तलिफ अंदाज है कैसे वो मुख्तलिफ तरीकों से इन सारी चीज़ों से हिफाजत कराता है। पानी के कतरे कतरे के साथ हिफाजत के असबाब होते हैं जो इनको मुखालिफ हवा से बचाते हैं। हवा लेकर उड़ जाए इन सारी चीज़ों को। और याद रखिए कि अल हफीज जल्ला जलालहू का इंसानी जिस्म में हिफाजत का अजीबो गरीब अंदाज है। इतना अंदाज अजीब है कि आप हैरान हो। हर रोज हमारे जिस्म की गहराइयों के अंदर एक जंग लड़ी जाती है और इसका इदराक किसी को भी नहीं है। इस जंग में एक फरीक वायरस और बैक्टीरिया पर मुश्तमिल होता है जो आपके जिस्म के अंदर सिरायत करने की कोशिश करता है और इसे काबू में कर लेता है। दूसरी जानिब दूसरा फरीक होता है, जी मुखाफिस खुलियों का, एंटीबॉडीज कहते हैं आप, इम्यून सिस्टम, जो इन दुश्मनों से आपके जिस्म को बचाते हैं और दुश्मन हमले के लिए इंतज़ार करता है ताकि मौका मिलते ही मतलूबा हिस्से तक पहुंच जाए और जूं ही पहले मरहले में अपने हदफ के इलाके में दाखिल हो जाए ना। मगर आप देखते हैं कि वो जो अपॉइंटेड एरिया होता है ना, वहाँ मजबूत मुनज्जम और डिसिप्लिन के साथ सिपाही खड़े होते हैं। एंटीबॉडीज हमारे जिस्म में कोई ऐसे ही नहीं घुसता। ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये अल्लाह के अल हफीज़ होने की दलील है। इसको भी लिख लीजिए। सबसे पहले जो दिफाई जंग लड़ने वाले ये सिपाही ना, ये दुश्मनों के सिपाहियों को निगल जाते हैं और वो ऐसे जंग लड़ते हैं जैसे बाहर की दुनिया में जंग होती है। ये तो आपने कभी देखा ही नहीं ना। कभी आप माइक्रोस्कोपिक देखिए और छोटे छोटे सेल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं जो अपनी आप मौत मर जाएं अगर अल हफीज़ उनकी हिफाजत ना कराए। तो एंटीबॉडीज़ के ज़रिए और इम्यूनिटी पैदा करके वो आपके मेरे जिस्म के एक एक इंच, एक एक पोर, एक एक मुसाम की हिफाजत करता है। ज़ख्म होते पे ठीक कैसे हो जाता है? मैं अक्सर सोचती हूँ कि जब कोई इन्फेक्शन हो तो कहते हैं गोलियाँ खाएं। तो गोली खाई आपने, 10 दिन का कोर्स किया, इन्फेक्शन को कैसे पता चला कि ये आपके पाँव पे इन्फेक्शन है, आपकी उंगलियों पे है, आपके जिस्म में? ये अल्लाह की साथ है। अल्लाह कैसे इन सारी चीज़ों के इंतजाम कराता है, बस आप कह लीजिए कि अल हफीज़ आपको मुझे कई बीमारियों से बचाता है। ये जो कोरोना से बचने की वैक्सीन है ना, ये अल हफीज़ के अल हफीज़ होने की दलील है। सबक तो कोई ना कोई बना देगा ना। आपका मेरा काम नहीं है इन चीज़ों पे सोचना, लेकिन अगर आप फितरत के निज़ाम के साथ जिए, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी वैक्सीन पहले ही बनती हैं। ये तो हमारा अपना लाइफस्टाइल ख़राब हो गया। पहले तो ऐसी कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं थी। जितना आर्टिफिशियल दुनिया में जाते जा रहे हैं, उतनी बीमारियां भी फैशनेबल किस्म की आ गई। जैसे मैदान जंग में दस्ते के दस्ते जाते हैं और कैंप्स बनते हैं ना, आपको अगर मैं पूरा फ्लो चार्ट बना के दिखाऊं तो आप हैरान हो जाए। हमारे जिस्म में सारा दिन जंगें चलती रहती हैं। एक ट्रूप उधर जा रहा है टुप 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 करके, वो उधर जा रहा है, वो कहते उधर चोट लग गई, वो उधर कहते खून निकल रहा है, वो कहते बाल खिंच गया, उधर ये हो गया। चलते चलते आपको ठोकर लगती है, आपको याद भी नहीं होता आप काम में लगे हुए हैं, छुरी का कट लग जाता है। अल हफीज अंदर के निज़ाम को ऐसे एक्टिव करता है, वो जाके खुद ही ठीक ठाक करके खून जमा के पस बनती है और पस ख़त्म हो जाता है। क्या आपने मैंने ये सब किया? क्या हम अपने आप को जम से घिरे हुए हैं, हम इसे बचा सकते हैं? बीमारियां, मौत, हम सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं क्या उसमें जर्म्स नहीं होते? जो खुराक खाते हैं उसमें जर्म्स नहीं होते? कौन बचाता है? हम बेखबर हैं, अल हफीज़ बेखबर नहीं है। वो हमें हर बीमारी से बचाता है, हमारी मौत से बचाता है। और याद रखिए कि अल हफीज़ ने ज़मीन व आसमान को इंसान के लिए महफूज बनाया। पुरानी छतों के पास से गुजरेंगे ना तो आपको खौफ आएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर पहाड़ गाड़ दिए, ताकि ज़मीन अपनी जगह से ना हिले। अलहफीज ने इंसान के लिए पुरसकून तरीके से ज़मीन पर चलने फिरने का निज़ाम कायम कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने आसमान को महफूज में सक़्फ़म महफूजा का लफ्ज़ है कुरान में। इंसान आसमान की बुलंदी को देखकर अपने ऊपर गिरने का तस्वुर भी नहीं करता, इसके बरक्स आप देखिए ज़रा पुरानी बिल्डिंग हो तो परेशान हो जाता है इंसान। और इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें पैदा करके छोड़ नहीं दिया, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को पैदा करके छोड़ नहीं देते, बल्कि हमें रिस्क भी दिया और हमारी हिफाजत भी की ज़मीन के अंदर की चीज़ों से, कीड़ों से, मकोड़ों, सांप, बिच्छुओं से। और सबसे बड़ी बात देखिए आसमान से उतरने वाली मुख्तलिफ आफात से, कितनी रेज उतरती हैं, कितने सैारे टूटते हैं, सितारे टूटते हैं, ये तो एक पूरा ओजोन लेयर का सिस्टम डाल दिया, अल्ट्रा वायलेट रेज है हमारे ऊपर। ये अल्लाह की शान है कि वो बंदों की हिफाजत करता है। और एक जुमला लिखिए कि मखलूक से अगर अपनी हिफाजत को वो उठा ले तो वो मखलूक फना हो जाती है। दरअसल हमारी हिफाजत अलहफीज की तरफ से होती है, जब अपनी हिफाजत को उठा लेता है हमारा नुकसान हो जाता है, ख्वाह कितने ही पहरेदार मुहाफिज और निगेबान क्यों ना हो। फिर इसी तरह याद रखिए कि ज़िंदगी और मौत का निज़ाम अलहफीज के हाथ में है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, जो इस्लाम के सिपाही और जर्नैल मशहूर हैं, पूरी उम्र शहादत की तमन्ना में जिहाद में मसरूफ़ रहे और हमेशा यही दुआ की कि अल्लाह मेरी मौत चारपाई पर ना हो बल्कि एक निडर सिपाही की तरह मैदान जंग में हो। लेकिन आखिरकार मौत बिस्तर पर ही आई, जंग में नहीं आई, क्योंकि अल्लाह की हिफाजत है जो तलवारों की छाँव में इंसान को बचा ले। और अल हफीज जिसे अपनी हिफाजत में रखे उसे कौन चखे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कौम ने आग में डालना चाहा, अल हफीज ने गुलो गुलजार कर दिया उस आग को। वकुलना या नारुकूनी बर्दम व सलाम अला इब्राहिम। हज़रत सारा की तरफ सरकश शैतानी सिफत वाले बादशाह ने बुरे इरादे से हाथ बढ़ाया, अल हफीज ने गैबी कुदरतों के साथ और कुव्वतों के साथ उसको शल कर दिया, जमीन में धंसने लग गया और ऐसा माजूर हो गया कि रो रो के माफी मांगी कि मुझे छोड़ दो, ये तो कोई बड़ी पहुंची हुई औरत है। और एक दो बार ऐसा हुआ तो उनको जाने ही दिया। और अल हफीज वो है लिखिए जिसने हिजरत की रात, बल्कि उन रातों में अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के नबी की हिफाजत फरमाई। खुद अबू बकर फरमाते हैं कि अगर वो अपने पाँव की तरफ देखते तो हमें देख लेते, अल्लाह के नबी अगर ये अपने कदमों की तरफ देख लें तो ये हमें देख लेंगे। तो आपने कहा गम ना करो, उन दो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह हो। तो अल हफीज मोमिन का मुहाफिज है। और अल हफीज वो है जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत एक औरत ने बहुत सारी औरतों के मुकाबले में की, जब उनके दिल रीझ गए थे, क्योंकि अल्लाह सुभान तआला अल हफीज होने की सूरत में मोमिन बंदों की भी हिफाजत करता है, उनको ईमान से कुफर की तरफ ले जाने से बचाता है। दुआ करें हमारे जवान बच्चों की भी अल्लाह हिफाजत फरमा दे। और इसी तरह अल हफीज वो है जो शैतान की चालों से अपने बंदों की हिफाजत फरमाता है, क्योंकि इंसान के अपने अंदर बुराई से बचने की ताकत नहीं। 13वें पारे की पहली आयत ही ले लें, वमा उबर्रियु नफ्सी इन्ना नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिमा रब्बी। अल्लाह रहम ना करे तुम्हारा नफ्स हमारा ही हमें तंग कर दे। और इसी तरह अल हफीज वो है जो अपने ख़ास बंदों की, जो सच्चे दिल से पूरे अखलाक के साथ अल्लाह सुबहाना ताला के बावक्कार और इज्जतदार बंदे बनना चाहते हैं, हिफाजत करता है। फिर शराब से उनकी हिफाजत करता है, जिना से उनकी हिफाजत करता है, बदकारियों से उनको बचाता है। और अल हफीज ने ऐसे फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जिसके हुक्म से इंसान की हिफाजत करते हैं। और हकीकत है कि अल हफीज ही वो है जो तकलीफ़ और आजमाइश में हिफाजत करता है, गैर महसूस तरीक़ों से हिफाजत करता है जिसकी तरफ गुमान भी नहीं होता। और अल हफीज वो है जिसने पानी की लहरों में, समंदर या दरिया में एक मासूम मूसा बेबी की हिफाजत कर दी। माँ तो उसको संदूक में डाल के लहरों के सुपुर्द कर आई अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के वादों पर यकीन करते हुए, लेकिन अल हफीज ने उस बच्चे को दरिया की लहरों में नहीं डूबने दिया। और सबसे बड़ी बात, कत्ल के इरादे से आने वाला शख्स मुहाफिज बन गया। ये कौन थे? ये उमर फारूक थे। कुफार कैसे नबी सल्लम के दुश्मन थे। और हज़रत उमर के मुसलमान होने का वाक़ा याद कर लीजिए, सारी बातें समझ आ जाएंगी आपको। कैसे अपनी बहन के घर में उनको आवाज़ आई और चल पड़े और गए थे अल्लाह के नबी की जान लेने, और रास्ते में किसी ने कहा पहले अपने घर की खबर तो लो। साद बिन वक़ास से उनसे कहा, कहा क्यों क्या हुआ है? कहा तुम्हारे तो अपने घर वाले बेदीन हो गए। और इसी तरह होते हुआते जब उमर को पता चला तो वो सीधे बहन के घर के, और वो वाक़ आपने बड़ी दफ़ा सुना है। हज़रत ख़बाब ने दरवाजे बंद कर दिए उमर को आता देख कर, छुप गए सारे, लेकिन अल्लाह ने उमर को मुहाफिज बनाना था। बहन को मारा तो खून निकल आया, बस उसने उमर का दिल पिघला दिया, तू बेदीन हो गई है। ये क्या बातें हो रही थी, ये क्या पढ़ रहे थे, मुझे भी दिखाओ। बहनोई उनको घसीटा और खूब मारा। बहन ने चुड़ाना चाहा, उनको भी थप्पड़ पड़ गया। आखिर वो भी तो उमर की बहन थी ना। कहने लगी, उमर हमको इस वजह से मारा जाता है क्या? मुसलमान हो गए? हाँ हम मुसलमान हो गए, जो तुझसे होता कर ले। फिर उमर की निगाह उस सहीफे पे पड़ी कि ये क्या है। वह रह गया था, गुस्से का जोश भी मारपीट से कम हो गया था, और बहन की मोहब्बत तो फिर आती है ना, शर्म भी आई कि औरत पे हाथ उठाया। और बहन ने कहा, नहीं तू तो नापाक है, जा वजू करके आ, गुसल करके आ, फिर दूंगी। उमर गए गुसल के, और गुस्सा ठंडा हुआ, दिमाग ठंडा हुआ, फिर लेके पढ़ा और सूरह तौहा पढ़नी शुरू की। इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी वाकिमिस्सलात लिज़िक्री। बस इतना ही पढ़ा था अभी कि दिल की हालत बदल गई, कहा मुझे भी ले चलो। जब ये बात सुनी तो कोनों में छुपे हुए सब बाहर आ गए। हजरत खबाब भी आए, उमर तुझे खुशखबरी है, कल मैंने सुना अल्लाह के नबी दुआ मांग रहे थे कि अल्लाहुम्मा इज्जल इस्लाम बिहब्बे रजुलैनी इलैक, कौन, उमर अब्निल खत्ताबी और उमर अब्नी हिशाम। या अल्लाह उमर और अबू जहल में जो तुझे ज्यादा पसंद हो इससे इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। आप भी दुआ किया करें अच्छे अच्छे लोगों को नीयत में रख के कि अल्लाह इनको एक कुरान पे ला, इनको इस्लाम पे ला, क्योंकि इनकी कुव्वत मारूफ थी। तो अल्लाह के नबी की दुआ उमर के हक में कबूल हुई, और फिर ये गए और जुमे की सुबह को मुसलमान हो गए। तो ये अल हफीज है, ये उसी की शान है। और याद रखिए कि अल हफीज के कायम करदा हदूद की हिफाजत करनी है। अब आपने मैंने क्या करना है, सबसे ज्यादा जिस चीज की आपने हिफाजत करनी है वो अकीदा तौहीद है। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत कीजिए, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए। जिसने भी इस हक की हिफाजत दुनिया में की, अल हफीज क्यामत के दिन अपने अजाब से उसकी हिफाजत फरमाएंगे। अगर ऐसे शख्स को अपने गुनाहों की वजह से अजाब भी हुआ तो तौहीद पर कायम रहने की वजह से महफूज भी रहेगा इंशाल्लाह। इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, नमाजों की हिफाजत करो, बिलखसूस दरमियानी नमाज की, हाफिज़ुस सलावाती, और कौन सी, सलातुल वुस्ता। क्या कहा, कद अफलहल मोमिनून, बेशक फला पागे वो मोमिन कौन है जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। अल्लामा इब्ने कय्यिम फरमाते हैं कि नमाज रहमान से कुर्ब का जरिया है। तो वो बड़े बड़े वाजिबात जिनकी हिफाजत का हुक्म दिया गया उनमें नमाज है। तो आपने मैंने इस नाम को पढ़ते हुए नमाजों की हिफाजत करनी है। फिर इसी तरह वो चीज़ें जिनकी हिफाजत का हुक्म है, इनमें कान, आंख और दिल भी है। अपने कान, आंखों और दिल और अक्ल की ऐसी चीज़ों से हिफाजत करें जिनसे अल्लाह ताला की नाराज़गी और गुस्सा मिलता हो। शर्मगाह की हिफाजत करनी है, क्योंकि दो दफ़ा तीन दफ़ा एक ही जगह आता है सूरत मोमिनून, खोल कर देख लीजिए कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। मर्दों को क्या कहा, यहुद्दु मिन अफ्सारिहिम व यक्फज़ु फुरूजहुम, यही जुमला औरतों के लिए सूरत नूर में भी है। फिर जिन चीज़ों की जमानत का हुक्म अल्लाह ने दिया इनमें कसम भी, अपने अपनी कस्मों की हिफाजत करनी है। अल्लाह ताला फरमाया, अपनी कस्मों की हिफाजत करो, बात बे बात कसम न खाइए। फिर इस हम पर वाजिब अपने दीन की हिफाजत भी, अल्लाह के इस दीन की हिफाजत में अगर आज आप खड़े हो गए तो बच जाएंगे इंशाल्लाह। दुआ कीजिए, मोमिन बंदा जब अल्लाह से अपने दीन की हिफाजत के लिए दुआ मांगता है ना, तो अल्लाह सुबहाना ताला मोमिन के लिए ऐसे रास्ते खोल देते हैं कि सोचा भी नहीं होता, ऐसे असबाब हायल कर देते हैं नुकसान पहुंचाने वाले के बीच में कि बंदा सोचता भी नहीं है। और इसी तरह इस नाम से मुतल्लिक कुछ दुआएं और अज़कार, जिसमें एक दुआ अल्हम्दुलिल्लाह आप सुबह शाम की दुआ में सीख चुके हैं, हिस्नुल मुस्लिम में भी ये दुआ आपने सीखी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ्व वल आफियत फी दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ्व वल आफियत फी दीनी व दुनिया व अहली व माली, अल्लाहुम्मा अस्तर अवराती व आमिन रौआती, वाहफजनी मिन बैनी यदैया व मिन खल्फी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फौकी व अऊज़ु बिअज़मतिका नुख्ताल मिन तहती। ए अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में आफियत और सलामती की भीख मांगता हूँ। ए अल्लाह, मैं तुझसे अपने दीन और दुनिया और अपने घर बार और मालो मता में सलामती और दर गुजरी की भीख मांगता हूँ। ए अल्लाह, मेरी पोशीदा बातों की पर्दा पोशी कर और मेरी घबराहटों को अमन में रख। ए अल्लाह, तू मेरे आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर से आने वाली मुसीबतों और बलाओं से मेरी हिफाजत फरमा। मैं इस बात से भी तेरी पनाह में आता हूँ कि मैं अचानक से हलाक हो जाऊँ। देखिए हम कितनी हलाकतों के बीच में बैठे हैं, तो ये दुआएं मांगा करें। इसी तरह आपने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को एक मौके पे जब वो सवार थे आपके पीछे तो क्या कहा कि या गुलाम, ए बच्चे, मैं तुझे वो कलेमात दे दूँ कि तुम सीख लो, और वो क्या है कि अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, अल्लाह की हिफाजत करोगे तो इसे अपने सामने पाओगे। कहा अल्लाह की हिफाजत क्या है, यानी उसके साथ शिर्क ना करो। तो आखिर में अलमोज़तिल हसना, इस सिफाती इसम से ताल्लुक़ पैदा करने वालों पर लाजिम है कि क्या करें, पहली बात है कि अल्लाह को मुहाफिज़ हकीकी मान लीजिए। असबाब इख्तियार भी करते हैं ना, तो भरोसा असबाब पे ना कीजिए। फिर इसी तरह हिफाजत ज़ाहरी के जुमला असबाब को बग़ैर अल्लाह ताला की चाहत के हेच और हकीर समझें, यानी अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो इनमें से कोई चीज़ काम नहीं करेगी, ये यकीन रखिए। फिर इस तरह अपनी जान माल और औलाद को अल्लाह की हिफाजत में दे दीजिए। फिर इसी तरह फितना शहवत का सबसे बड़ा सबब और मुकदमा, यानी वो चीज़ जो उसको आगे लेके जाती है, वो नज़र है, ना महरम को देखना। तो अपनी हिफाजत कीजिए आंखों की, यकफुजू मिन फुरूजिहिम पे बात आ जाएगी, यानी गैर महरम औरत को नहीं देखना, गैर महरम मर्द को शहवत से नहीं देखना। और जो चाहता है कि उसको अल्लाह का ताल्लुक मिले तो वो मजबूत और पुख्ता ईमान हासिल करे, तो इसको अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है। इसी तरह देखिए, मीडिया जाम है, अखबार है, टीवी है, इश्तहार, कंप्यूटर, सारा दिन तो आप मशीनों में रहते हैं, आप अपनी निगाहों की खुद चौकीदारी कीजिए। और इसी तरह से अल्लाह ताला की हिफाजत में आकर हर बला और शैतानी आफत और अपने अंदर के नफसानी ख्याल, वसवसे और गंदी बातें और नाइटमेयर्स और इसी तरह डिप्रेशन और एंग्जाइटी, इससे अल्लाह की हिफाजत में आइए। और इसी तरह हम सब पे फ़र्ज़ है कि अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारें। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की हिफाजत कीजिए, नमाज, रोज़ा, ज़कात, बंदों के हकूक, इन सब की हिफाजत कीजिए। और इसी तरह अल्लाह की इताअत पे जमिए, मकसद हयात को पूरा कीजिए, अल्लाह के दीन और शरीयत की हिफाजत करें, और अल्लाह ताला के अहकामात की हिफाजत करनी है। इसी तरह अपनी हिफाजत के लिए रात को सोते वक्त सुबह उठ के सुबह शाम के अज़कार पढ़िए। हिफाजत की दुआएं सुबह शाम में आप शामिल कर सकते हैं। बीमारियों की हिफाजत की दुआएं मांगिए। नफ्स के और जिन्नात के शर से बचने की दुआएं आप मांगें। अल्लाह ताला ही है जो बंदे को बचा के रखता है। और इसी तरह से बहुत कुछ है जो आपको मुझे इस नाम के साथ लेना है। अल्लाह ताला आपसे बेहतरीन तरीके से ये काम कबूल करे। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।